वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार।
मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए आज भी तैयार बैठे हैं। मित्रों, इन दिनों हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और हम इन दिनों इस बात को सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दाखलता है और हम उसकी डालियाँ हैं, और हम ये भी सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में देने के लिए उसने वायदा किया है, ताकि वह यहाँ से जाए और हमारे लिए एक सहायक को भेजे। हमारे पिछले अध्ययन के अंत में हम देख रहे थे कि मसीह का जाना हमारे लिए अवश्य है, और यह इसलिए भी था कि जाकर वह हमें अंतर्वास हेतु पवित्र आत्मा भेजेगा जो सर्वव्यापी होगा। तो आइए हम आज के अध्ययन में जाने से पहले अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर की निकटता में आएं, आंखों को बंद करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित वचन का अध्ययन करें, क्योंकि हम जानते हैं कि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऐसा अवसर नहीं है, लेकिन आपने हम सबको यह समय दिया है ताकि हम आपके वचन में से सीखें। पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, उस पर विचार करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी सामर्थ प्रदान कीजिए, अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए, ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं हमारे हृदयों में हमारे विचारों में कार्य करने पाए, और ऐसा होने दीजिए कि हम अपने जीवन में आपके निकटता और एक कदम आ सकें। हम विनती करते हैं हमारे उन भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में दुखित हैं, अपने समस्याओं को लेकर, बीमारियों को लेकर, पढ़ाई को लेकर, जीवन साथी को लेकर और आर्थिक परेशानियों को लेकर। प्रभु, आप उनके साथ हो, उनकी भी सहायता मदद करें, ताकि इस बात को वे जान सकें कि आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनके हर एक जरूरतों को जानते हैं, क्योंकि आप वही परमेश्वर हैं जो सदैव प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, इस वक्त जब हम आपके वचन में ध्यान देते हैं, आप हम सब की सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पवित्र आत्मा की सेवाएं विविध होंगी, उनमें से एक होगी जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 8 से 11 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मेरे मित्रों, यहाँ पर शब्द है निरुत्तर। निरुत्तर के मूल यूनानी शब्द का अर्थ है दोषी ठहराना। यह एक वैधानिक शब्द है, न्यायालय में प्रमाण के साथ सिद्ध करना है कि अपराधी दोषी है। जब तक आप इसे साबित नहीं करते हैं तो यह आपका प्रमाण नहीं माना जाता है और अपराधी दोषी नहीं ठहराया जाता है। पवित्र आत्मा हमारे मन में हमारे पाप का प्रमाण प्रस्तुत करके हमें पाप का बोध कराता है। विश्वास में प्रभु यीशु को ग्रहण करने से पूर्व हमारे मन में पाप का स्वीकार करना आवश्यक है। आज पवित्र आत्मा संसार को तीन बातों का सप्रमाण बोध कराता है। पहला है पाप, धार्मिकता और न्याय का। यीशु ने स्पष्ट किया कि पाप है, उसमें विश्वास न करना। आज सबसे बड़ा पापी कौन है? कोई हत्यारा? कोई नास्तिक? जी नहीं, सबसे बड़े पापी आप हो सकते हैं। आप निश्चय ही अप्रसन्न होकर कहेंगे, प्रचारक, आप मुझे पापी कैसे कह सकते हैं? मैं एक नियम पालक नागरिक हूं। यहां प्रश्न नियम पालन का नहीं है, मसीह को ग्रहण करने का है। यदि आप उसमें विश्वास नहीं रखते तो आप नरक में जाएंगे। प्रभु यीशु का त्याग करने वाला परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा पापी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 22 पद में यीशु ने कहा, यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। मेरे मित्रों, जिसने यीशु का नाम सुन लिया है उसे कोई न कोई निर्णय लेना ही होगा। मसीह यीशु का इनकार पाप है। अब दूसरी बात देखते हैं, वह संसार को धार्मिकता का बोध कराएगा। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 25 पद के अनुसार, प्रभु यीशु को हमारे कारण मृत्यु दंड मिला, परंतु वह हमारे धार्मिकता के लिए मृतकों में से जी उठा। पापों की क्षमा ही पर्याप्त नहीं है, परमेश्वर के समक्ष आने में धार्मिकता आवश्यक है। प्रभु यीशु ने हमें अपनी धार्मिकता पहना दी है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 8 और 9 पद में पौलुस इसी धार्मिकता की बात करता है जो मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। वह हमारे पाप शून्य ही नहीं करता, वरन अपनी धार्मिकता हम में जोड़ देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें स्वर्ग में या तो प्रभु यीशु के बराबर अधिकार प्राप्त है या बिल्कुल ही नहीं। तीसरी बात, वह संसार को न्याय का बोध कराता है। कुछ लोग इसे अपना न्याय सोचकर डरते हैं। नहीं, यीशु ने कहा कि वह संसार को न्याय का बोध इसलिए कराएगा कि संसार का सरदार शैतान दोषी ठहराया गया है। अतः मेरे मित्रों, आप पर मुकदमा नहीं चल रहा है, परमेश्वर ने तो आपका न्याय कर दिया है। आप पापी हैं और पौलुस कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, जिसे मैंने पहले भी आपको बताया है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो के पत्र 6 अध्याय उसके 23 पद में हम इसे पढ़ते हैं। यही परमेश्वर का न्याय है, क्योंकि वह आपकी मजदूरी को अपने ऊपर ले लिया ताकि आप अनंत जीवन पाएं। मेरे मित्रों, मनुष्य को परमेश्वर के न्याय के बारे में सुनना अच्छा नहीं लगता है। फेलिक्स न्याय की बात सुनकर पौलुस पर क्रुद्ध हो गया था। उन्हें परमेश्वर द्वारा जगत की व्यवस्था करना पसंद नहीं। उन्हें यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि परमेश्वर पापियों को अनुग्रह द्वारा नरक से बचा लेता है, अर्थात उन्हें बचा सकता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16 अध्याय उसके 12 से 14 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए कि वह उन बातों को बताएगा जो परमेश्वर उसे बताएगा। हमें अनुग्रह और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है। कैसे? बाइबल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, पवित्र आत्मा को हमारा शिक्षक होना होगा। वह हमें संपूर्ण सत्य में ले चलेगा। उसने प्रेरितों को सत्य के मार्ग में लेकर चलाया था, जिसका प्रमाण बाइबल की प्रतियां है। पवित्र आत्मा का कार्य है कि वह प्रभु यीशु की शिक्षाओं को अंतर्ग्रहण करवाए। पत्रियां मसीह यीशु का महिमान्वित करते हैं और उसे कलीसिया का सिर कहते हैं। वे मसीह के जीवन और सेवा की व्याख्या करते हैं। वे भावी बातों की चर्चा करते हैं और उदाहरण के रूप में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य। यहाँ 7 चरण दर्शाए गए हैं। पहला, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा का आगमन है। दूसरा है, वह सत्य का मार्ग बताएगा। और तीसरा, वह अपनी ओर से न कहेगा। और चौथी बात, वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। और पांचवा, वह आने वाली बातें बताएगा। और छठवा, वह यीशु की महिमा करेगा। और सातवीं बात, वह मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरे मित्रों, इन चरणों के द्वारा हम अपने सुनने और पढ़ने को परख सकते हैं। बाइबल अध्ययन में आपको प्रभु यीशु की झलक दिखाई देती है, तो वह क्या है? वह पवित्र आत्मा का काम है, यीशु की महिमा। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यहाँ पर यीशु फिर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहरा रहा है। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। और पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 2:9-10 पद में लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। अर्थात पवित्र आत्मा ही हम पर परमेश्वर के भेद को प्रकट कर सकता है। मेरे प्रियो, यह बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम पर कुछ भी भेद प्रकट नहीं किया जा सकता। अर्थात हमें एक सहायक की आवश्यकता है और वह सहायक पवित्र आत्मा है जो हमें वचन के प्रकाशन को देता है। हम यूहन्ना 16:16 पद में पढ़ते हैं, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। इसका क्या अर्थ है? थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे अर्थात वह मारा जाएगा और कब्र में रख दिया जाएगा, फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, पुनरुत्थान के पश्चात वे उसे फिर देखेंगे। आज इसका अर्थ हमारे लिए बहुत गंभीर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उठा है और वह पुनरुत्थित प्रभु है। हम 16:17-20 पद में आगे पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा हुआ है, तब उसके कितने चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरे इस बात के विषय में पूछ पाछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिष्यों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह थोड़ी देर से क्या अभिप्राय रखता है। एक बार की थोड़ी देर बाद वह थी जब वह कब्र में था, और दूसरा थोड़ी देर बाद आज का समय है जब वह पिता के पास स्वर्ग में है। उसने कहा था कि वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, अतः उसने पवित्र आत्मा भेजा सहायक के रूप में। आज पवित्र आत्मा असंख्य मनुष्यों में प्रभु यीशु को जीवित दर्शाता है। पवित्र आत्मा ने उन्हें कष्टों से, घृणा से और निंदा से उबारा है। उनका विलाप आनंद में बदल गया है। हमारा दुख भी आनंद में बदल जाएगा यदि हम उसे सहायक के रूप में स्वीकार करते हैं। यूहन्ना 16:21-22 पद में पढ़ते हैं, जब स्त्री जनने लगती है तो उसको शोक होता है क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची, परंतु जब वह बालक जन्म चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। आप कहाँ हैं? क्या है मेरे मित्रों, यदि आपने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया है तो आप उसकी संतान हैं। यदि आप दुख में हैं तो आपका दिल टूट गया है, आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं जो रुकते नहीं, तो निश्चय जानिए कि आनंद की भोर होने वाली है। मेरे प्रियो, वह आपके जीवन में आनंद लाएगा जिस दिन हम उसकी उपस्थिति में होंगे और मुड़कर अपने जीवन को देखेंगे। उस दिन हमें पछतावा होगा कि हमने उसके लिए और कष्ट क्यों नहीं उठाए। उसकी उपस्थिति का आनंद सब दुखों को दूर कर देगा। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 23 और 24 पद में पढ़ते हैं, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ पर तीसरी बार वह उसके नाम में प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। हम देख चुके हैं कि उसके नाम में मांगने की शर्त है कि हम उसमें बने रहें, उसकी आज्ञा माने। अपनी प्रार्थना के अंत में कहना यीशु के नाम में कोई अर्थ नहीं रखता है। ध्यान रखें कि शिष्य यीशु के नाम में प्रार्थना करना नहीं जानते थे। किसी ने पूछा कि यीशु से सीधी प्रार्थना नहीं की जा सकती है क्या? क्यों नहीं, परंतु आप अपने मध्यस्थ को क्यों खोना चाहते हैं? यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा आपके लिए विनती करता है, इसलिए हमें उसके नाम से प्रार्थना करना है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 25 से 27 पद में आगे पढ़ते हैं, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे दृष्टांतों में और फिर नहीं कहूंगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी है और यह भी प्रतीति की है कि मैं पिता की ओर से निकल आया हूं। मेरे प्रिय मित्र, यीशु के क्रूसीकरण का समय आ रहा था, मनुष्य के उद्धार का समय जिसके लिए वह इस संसार में आया था। यीशु अपने शिष्यों पर प्रकट करना चाहता था कि परमेश्वर कठोर नहीं है, वह हमसे प्रेम करता है, इसलिए यीशु के नाम में मांगी गई प्रार्थना वह अवश्य ही स्वीकार करेगा। परमेश्वर प्रार्थना सुनने और उत्तर देने के लिए सदैव तैयार रहता है, परंतु प्रार्थना करने वाले के मन में यीशु के लिए प्रेम हो और वह मसीह की सहभागिता में हो और उसका आज्ञाकारी भी हो। हम यूहन्ना 16 उसके 28 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूँ, फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह सामान्यता स्वीकृत है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के मुख्य पद हैं, यूहन्ना 20 अध्याय उसके 30 और 31, परंतु इस पद को भी उनके साथ जोड़ना चाहता हूँ। अनंत परमेश्वर मनुष्य के उद्धार के लिए इस संसार में आया था और अपना काम पूरा करके पिता परमेश्वर के पास लौट गया। यूहन्ना का उद्देश्य यही दर्शाना है, वह अनादि से निकलकर आया और अनंत में चला गया। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया ताकि उस कार्य को जिसे परमेश्वर ने उसे दिया है पूरा करे, और उसका कार्य था कि मनुष्यों के उद्धार के लिए अपने प्राण को दे, और उसने ऐसा किया भी। और अब वह अपने शिष्यों से कहता है कि मैं जहाँ से आया अर्थात पिता से आया और पिता के पास लौट जाता हूँ, और वह उनसे यह भी कहता है कि जो कुछ तुम मुझसे प्रार्थना में मांगोगे अर्थात मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा, क्योंकि वह प्रभु है। मेरे मित्रों, आज हम कई बार परमेश्वर से मांगते हैं लेकिन पाते नहीं। उसका कारण यह है कि हम मसीह में नहीं हैं और हम उसकी आज्ञाओं का पालन भी नहीं करते हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, तो निश्चय जाने कि परमेश्वर मुझे और आपको अवश्य ही आशीष देगा और हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, क्योंकि वह हमें कष्ट देने नहीं परंतु कष्ट से छुटकारा देने आया है। मेरे मित्रों, आज हमारे जीवन में इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आज हम किस ओर बढ़ रहे हैं। क्या हम प्रभु की आज्ञाकारिता की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हम उसमें बने हुए हैं? क्या हम फल की उम्मीद करते हैं या अपने तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं? मैं नहीं जानता कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी बातों को, आपके हृदय के उन भेद की बातों को भी जानता है जिसे आपके माता पिता, आपके मित्र, आपके पड़ोसी और आपके कोई भी सदस्य नहीं जानते हैं। लेकिन आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसके पास आएं और उसे अपना जीवन दें, ताकि वह आपकी प्रार्थनाओं को सुने। जब आप उसे मांगेंगे यीशु के नाम में तो वह उसे पूरा करेगा। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। कदम राहों में इसलिए न सोता दिन रातों में, फिसले ना कभी कदम राहों में इसलिए न सोता दिन रातों में।